अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता की बात सुनी तो उसने कहा, बस हम यही सुनना चाहते थे। हमें पता था आप ये सब सिर्फ और सिर्फ मासा की वजह से कर रही हैं, लेकिन हम अब और मासा की वजह से आपको सफ़र नहीं होने दे सकते। आपने पहले ही मासा की वजह से बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब आप हमारी पत्नी हैं और सब कुछ आप अपनी मर्जी से करेंगी। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु की बात सुनी उसने अभिमन्यु के हाथ को पकड़ा और रोकते हुए कहा, हाँ तो ठीक है, हम भी अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे अभिमन्यु, हमारी मर्जी है, हम अब नहीं करना चाहते मॉडलिंग। अभिमन्यु ने इप्सिता की आंखों में आंखें डालकर देखा और उसने तुरंत इप्सिता का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, ठीक है, खाइए हमारी कसम और बताइए क्या सच में आपको मॉडलिंग नहीं करनी। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी उसने तुरंत अभिमन्यु के सर से अपना हाथ हटा लिया और तुरंत अपनी नज़रें नीचे झुका लीं। अभिमन्यु ने मायूसी से कहा, बस हम समझ गए आपका जवाब। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ छोड़ दिया। इप्सिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने अभिमन्यु को रोकते हुए कहा, प्लीज़ मत जाइए मासा के पास, हम नहीं चाहते। इप्सिता बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने उसके दोनों गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मासा ने हमेशा अपनी मर्जी चलाई है। हम और अर्पिता बचपन से ही मासा की सारी बातों को मानते आए हैं। उस वजह से हम दोनों ने ही काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना किया है, बट अब और नहीं। अब हम इस महल के राजा हैं और हम वो सब कुछ बदलने वाले हैं। आपको किसी भी चीज़ के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम मासा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमें पता है हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से मना लेंगे। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता के हाथ से छुड़ाया और वो सीधे मासा के रूम की तरफ चला गया। इप्सिता अभिमन्यु के पीछे पीछे भागी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अगर अभिमन्यु ने मासा से हमारे मॉडलिंग के बारे में कोई भी बात की तो मासा और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। इप्सिता भागते हुए अभिमन्यु के पास गई। जैसे ही अभिमन्यु ने मासा के कमरे का दरवाज़ा खोला उसने देखा मासा गहरी नींद में सो रही थी। इप्सिता ने जैसे ही मासा को सोते हुए देखा तो इप्सिता ने एक राहत की सांस ली और उसने अपने मन में कहा, चलो कम से कम मासा अभी सो रही हैं। इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और मासा के कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, मासा अभी सो रही हैं अभिमन्यु, उन्हें इस तरह नींद से उठाकर सारी बातें करना ठीक नहीं होगा। अभी आप हमारे साथ चलिए, आपको जो भी मासा से बात करनी है आप बाद में करिएगा। अभिमन्यु इप्सिता की बात नहीं मान रहा था, लेकिन इप्सिता ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वापस अपने रूम में ले आई। अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखा, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। तभी अभिमन्यु ने कहा, ठीक है, अभी आप मना कर रही हैं तो हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन हम आपके इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हैं। आपको मॉडलिंग करना है, हम आपकी मॉडलिंग में आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं इप्सिता। इप्सिता ने अभिमन्यु की ये बात सुनी और उसने अपना सर पकड़ लिया। वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप बेड पर आँख बंद करके लेट गई। इप्सिता के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। अभिमन्यु सारी बातें जानता था। उसने तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और किसी को मैसेज करने लगा। इप्सिता चुपचाप आँख बंद करके लेटी थी, वो मासा के बारे में ही सोचती जा रही थी। थोड़ी ही देर में इप्सिता को नींद आ गई और वो सो गई। अभिमन्यु उसके बगल में आकर लेटा और इप्सिता के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हम जानते हैं इप्सिता, आपने हमें राजा सा बनाने के लिए हमसे इतनी जल्दबाजी में शादी की और सब कुछ अपना पीछे छोड़कर आप हमारे साथ यहाँ पर आ गईं, लेकिन अब हमारी बारी है। हम आपको आपका वो सारा हक दिलाएंगे जो आप डिज़र्व करती हैं। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता को बिल्कुल अपने करीब खींचा और उसे अपनी बाहों में भरकर वो भी सो गया। अगले दिन सुबह इप्सिता की जल्दी आँख खुली और उसने देखा अभिमन्यु अभी भी सो रहा था। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अभिमन्यु हमारे बारे में आप इतना क्यों सोच रहे हैं? हम आपके और मासा के रिलेशन को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं और आप हैं कि उसे और भी ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इप्सिता ये बात सोच रही थी कि उसने गहरी सांस ली और उठकर सीधे तैयार होने के लिए वॉशरूम में चली गई। तभी अभिमन्यु की आँख खुली और उसने फ़ोन पर बात करते हुए कहा, हेलो, आप उदयपुर पहुँच गए? वेरी गुड, ठीक है, हम आपको पिकअप करने के लिए अपने आदमी को भेज रहे हैं। आप उनके साथ ही सीधे यहाँ राजमहल में आ जाइएगा। जैसे ही अभिमन्यु ने अपना फ़ोन साइड में रखा तभी इप्सिता वॉशरूम से निकलकर बाहर आई। इप्सिता ने साली पहनी हुई थी, उसके बाल गीले थे। वो अपने बालों को सुखाने लगी और चुपचाप शीशे के सामने खड़े होकर इप्सिता ने अपनी मांग में सिंदूर भरा और अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु उसे देखकर मुस्कुराया और बिना कुछ बोले चुपचाप वॉशरूम के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर बाद अभिमन्यु रेडी होकर बाहर निकल आया। तभी अभिमन्यु के फ़ोन पर एक मैसेज आया। अभिमन्यु ने जैसे ही उस मैसेज को देखा वो इप्सिता के पीछे आकर खड़ा हुआ और इप्सिता को बैक हग करते हुए कहा, चलिए इप्सिता, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी तो उसकी तरफ हैरानी से बोली, कैसा सरप्राइज़? इप्सिता काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रही थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन नज़र आ रही थी। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलिए। जैसे ही अभिमन्यु इप्सिता को लेकर नीचे आया उसने देखा सामने ध्रुव खड़ा था। ध्रुव को देखकर इप्सिता चलते चलते सीढ़ियों पर ही रुक गई। उसने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, ध्रुव यहाँ क्या कर रहा है?
अभिमन्यु ने इप्सिता के मुंह से सवाल सुनकर उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, हमने बुलाया है ध्रुव को। इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी उसने हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखा। तभी अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, ध्रुव ने हमसे कहा था कि उसे आपकी कुछ फोटोज चाहिए ऐसे किसी शाही महल में, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपका फोटोशूट यहीं शाही महल में करवा दें। वैसे भी हमारे महल की खूबसूरती के बारे में सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। ध्रुव इधर उधर चारों तरफ देख रहा था। उसने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, इप्सिता कैसी हो? इप्सिता ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी ध्रुव ने महल के चारों तरफ देखते हुए कहा, मैं अभी बाहर से आया हूँ और बाहर की लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर हम बाहर अपना फोटोशूट करेंगे तो इट्स विल बी ऑसम। इप्सिता ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी वो भागते हुए ध्रुव के पास आई और उसने ध्रुव को घूरते हुए कहा, ध्रुव हमने तुमसे कहा था ना कि हम अब तुम्हारे साथ कोई शूट नहीं करने वाले, उसके बावजूद भी तुम यहाँ पर आ गए। हम तुम्हारी मॉडल नहीं है, हम इस महल की रानी बन चुके हैं और तुम हो कि हमसे मॉडलिंग करने के लिए। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुन रहा था। उसने इप्सिता की बात बीच में ही काटते हुए कहा, बिल्कुल आप इस महल की रानी सा हैं, लेकिन आप इस महल में आराम से शूट कर सकती हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इप्सिता ने अभिमन्यु की ये बात सुनी और इधर उधर देखने लगी। महल में नौकरों के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था, मासा अपने रूम में थी। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, अभिमन्यु आप ठीक नहीं कर रहे हैं, हमें कोई शूट नहीं करवाना है, आप दोनों सब करना बंद करिए और ध्रुव तुम यहाँ से वापस जाओ और मेरे रिप्लेसमेंट में तुम कोई दूसरी मॉडल ढूंढो। जैसे ही ध्रुव ने इप्सिता की बात सुनी उसने कहा, इप्सिता तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारा रिप्लेसमेंट ढूंढ पाना इम्पॉसिबल है। अभिमन्यु ने ध्रुव की बात सुनी और उसने कहा, कोई रिप्लेसमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको ध्रुव, आप शूटिंग स्टार्ट करिए और इप्सिता आप बिल्कुल रिलैक्स होकर जैसे पहले शूट करती थी बिल्कुल वैसे ही शूट करिए।
जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात कही इप्सिता उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। तभी मासा कमरे से बाहर निकल कर आईं। उन्होंने अभिमन्यु की ये बात सुन ली और अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, क्या हो रहा है यहाँ पर? जैसे ही मासा वहां पर आईं, इप्सिता के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ गईं। तभी अभिमन्यु ने कहा, कुछ नहीं मासा, इप्सिता के फोटोग्राफर यहाँ पर आए हैं इप्सिता का शूट करने के लिए। मासा ने जैसे ही ये बात सुनी मासा की भौहें तन गईं और उन्होंने कहा, क्या कहा आपने, यहाँ महल में फोटोशूट? अभिमन्यु ने कहा, हाँ मासा, वो दरअसल इप्सिता की फोटोशूट के लिए उन्हें किसी महल की जरूरत थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम महल में ही उनका फोटोशूट करवा दें। और वैसे भी, अभिमन्यु बोल ही रहा था कि मासा ने अपना हाथ दिखाकर अभिमन्यु को चुप करते हुए कहा, बस अभिमन्यु अब और नहीं, हम देख रहे हैं कि जब से आप राजा सा बने हैं आप अपनी मनमानियां करते ही जा रहे हैं, लेकिन अब और नहीं। इप्सिता इस राजवंश खानदान की बहू है और अब उनका रुतबा एक रानी सा की तरह है, वो इस तरह से मॉडलिंग नहीं कर सकती। इप्सिता ने जैसे ही उनकी ये बात सुनी उसने अपनी आंखों को कसकर बंद किया और धीमी आवाज में कहा, हम जानते थे मासा यही कहेंगी, फिर भी अभिमन्यु हमारी बात नहीं मान रहे थे। इप्सिता ने उनकी तरफ देखा, मासा काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थीं। तभी अभिमन्यु ने कहा, मासा हम कोई अपनी मनमानी नहीं कर रहे, हम तो बस बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद ही बताइए, क्या जो चीज़ हमेशा से जैसी चलती आई है वो वैसे ही चलती रहेगी? आखिर हम 21st सेंचुरी में पहुंच चुके हैं, अगर हम अभी भी नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे? मासा ने अभिमन्यु को घूर कर देखते हुए कहा, बस अभिमन्यु हम आपसे कोई बहस नहीं करना चाहते और राजमहल में कोई फोटोशूट नहीं होगा। मासा की ये बात सुनकर अभिमन्यु ने कहा, मासा हमेशा से ही औरतों के साथ ऐसा क्यों होता आ रहा है? पहले आपने डैड के जाने के बाद सब कुछ अपने ऊपर लिया, आपने अपनी सारी ख्वाहिशों को मार दिया, उसके बाद अपने अर्पिता के साथ भी वैसा ही किया और अब आप चाहती हैं कि ये रीत जो जैसी चलती आ रही थी वैसी ही चलती रहे और अब इप्सिता भी उन्हीं चीज़ों को झेलें जो आप लोगों ने सहा है। मासा अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, हमें इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता अभिमन्यु, हम चाहेंगे कि आप भी इन सब चीज़ों में ना ही पड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक रॉयल फैमिली में रहने के साथ साथ आपको इन सारी चीज़ों की आदत अब तक पड़ जानी चाहिए और आप हैं कि। मासा की ये बात सुनकर अभिमन्यु उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं मासा, हम अब किसी भी चीज़ से और समझौता नहीं करने वाले, ये फोटोशूट होगा और इप्सिता अपनी मॉडलिंग को कम्प्लीट करेगी, मॉडलिंग में उनका करियर है और हम चाहते हैं कि वो अपने करियर पर फोकस करें। मासा ने जैसे ही ये बात सुनी उन्होंने इप्सिता की तरफ देखा। इप्सिता भागते हुए अभिमन्यु के पास आई और अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं अभिमन्यु ये आप क्या बोल रहे हैं, मासा आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम कोई फोटोशूट नहीं करने वाले, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, हम सिर्फ और सिर्फ एक रानी सा के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। ध्रुव तुम जाओ यहाँ से। ध्रुव वहीं चुपचाप खड़ा था। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ध्रुव आप कहीं नहीं जाओगे, मासा आपको अब इप्सिता को फोटोशूट करने की परमिशन देनी होगी। मासा अभिमन्यु की ये बात सुनकर वहीं चुपचाप खड़ी थी। तभी अभिमन्यु मासा के पास आया और उसने मासा के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा,
मासा, आप किसके बारे में सोचकर इतनी ज्यादा परेशान हो रही हैं? क्यों आप हर चीज को लेकर इतना ज्यादा घबराती हैं? राजमहल हमारा है, आपका है, आपको दुनिया वालों के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। दुनिया का तो काम है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से सब कुछ बोलते हैं। अगर आप उनके हिसाब से नहीं भी चलेंगी, उसके बावजूद भी वो लोग कुछ ना कुछ करके अगर उन्हें बोलना है तो वो बोल ही लेंगे। हम कहाँ तक किसके बारे में सोचेंगे? वैसे भी मासा, जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करना जरूरी होता है, इसलिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। और हम है ना, हम सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभालना जानते हैं। क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? अभिमन्यु की ये बात सुनकर मासा वहीं चुपचाप बैठ गईं और इप्सिता की तरफ देखने लगीं। इप्सिता अभिमन्यु को रोकने की कोशिश कर रही थी, तभी इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहा, अभिमन्यु प्लीज, हम नहीं चाहते कि ये सारी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ें, प्लीज आप चुप हो जाइए। इप्सिता की ये बात सुनकर मासा उसकी तरफ देखने लगी। तभी मासा के दिमाग में अभिमन्यु की कही सारी बातें घूमने लगी। उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर इप्सिता अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती है तो ठीक है, हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। जैसे ही मासा ने ये बात कही, अभिमन्यु मासा की तरफ देखकर मुस्कुराया और इप्सिता हैरानी से मासा की तरफ देखने लगी। तभी मासा ने कहा, शायद अभिमन्यु ठीक कह रहे हैं, हम कब तक अपनी जिद में आकर अपने बच्चों को दुख देते रहेंगे, बहुत हो गया ये सब कुछ, अब और नहीं। अभिमन्यु ने मासा की ये बात सुनी और उसने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, देखा, मासा मान गई। इप्सिता को अभी भी उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मासा अपनी जगह पर उठकर खड़ी हुई और उन्होंने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, अभिमन्यु शायद आप ठीक कह रहे हैं, क्यों हर बार किसी न किसी को अपना ड्रीम सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लेकिन आप नहीं। इप्सिता, आप इस महल की रानी है, आप अपने फैसले खुद ले सकती हैं, हमें आपके करियर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मासा इतना बोलकर इप्सिता के पास आई और उन्होंने इप्सिता को गले लगाते हुए कहा, शायद हम ही अपनी जिद में आकर आप सबको दर्द दे रहे थे, लेकिन अब नहीं। मासा ने इतना बोलकर अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप करिए, हमारी तरफ से आप लोगों को परमिशन है, किसी भी चीज को लेके कोई रोक नहीं है। इप्सिता के दिल में अभी भी कई सारी बातें थीं जो खटक रही थीं, लेकिन जब मासा ने खुद ही उसे सामने से फोटोशूट कराने और मॉडलिंग कंटिन्यू करने की परमिशन दे दी थी तो इप्सिता भला आप क्यों ही मना करती। वो ध्रुव के साथ अपना फोटोशूट करने के लिए रेडी हो गई। उसका फोटोशूट बहुत अच्छी तरह से हुआ और ध्रुव कुछ दिनों के लिए वहीं पर रुका। थोड़े दिनों बाद ध्रुव इप्सिता और अभिमन्यु से बात करने के लिए उनके पास आया। उनके साथ महल के हॉल में ही बैठते हुए बोला, तो फिर क्या सोचा है इप्सिता तुमने, मुंबई चलने का इरादा है या नहीं? वैसे भी नेक्स्ट वीक बहुत बड़ा फोटोशूट होने वाला है जिससे हम दोनों के करियर को एक अलग ही बुलंदी मिलेगी और मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। तभी अभिमन्यु ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप मुंबई जाएंगी। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर कहा, लेकिन यहाँ की सारी जिम्मेदारियां? अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम और मासा है ना, हम लोग सब संभाल लेंगे, आप बस अपनी मुंबई जाने की तैयारी करिए। अभिमन्यु ने इप्सिता को ध्रुव के साथ मुंबई भेज दिया। इप्सिता वहीं मुंबई में नंदिनी की मॉम के साथ जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहने लगी। इप्सिता ने फोटोशूट को पूरी लगन के साथ कम्प्लीट किया और 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अभिमन्यु को इप्सिता की याद तो बड़ी आई थी, लेकिन अपने काम की वजह से वो इप्सिता से मिलने नहीं जा पाया। अभिमन्यु ने इप्सिता के उस फोटोशूट के बाद उसके रिजल्ट को सुना। इप्सिता देश की नंबर 1 मॉडल बन गई थी। अभिमन्यु उसकी इस सक्सेस से बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। अभिमन्यु ने इप्सिता को सरप्राइज देने के लिए अपनी मुंबई की टिकट कराई और इप्सिता से मिलने मुंबई पहुंच गया।
इप्सिता जब अभिमन्यु से मिली तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई और उसने अभिमन्यु को गले लगाते हुए कहा, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप हमें इस तरह का सरप्राइज देंगे। अभिमन्यु, हमने आपको पिछले इन 3 महीनों में बहुत मिस किया। टू बी कंटिन्यूड।